एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम बात कर रहे हैं हैरोल्ड पिंटर की, एक ऐसा नाम जिसने 20वीं सदी के थिएटर को हमेशा के लिए बदल दिया। नोबेल पुरस्कार विजेता, नाटककार, पटकथा लेखक, लेकिन इन उपाधियों से कहीं ज्यादा वो शब्दों और खामोशियों के जादूगर थे।
बिल्कुल सही कहा। पिंटर सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वे भाषा के साथ मतलब जैसे एक अन्वेषक थे, प्रयोग करने वाले।
हाँ,
उन्होंने हमें सिखाया कि रोजमर्रा की बातचीत की सतह के नीचे कितना कुछ छिपा हो सकता है। तनाव, डर, सत्ता का खेल। उनकी शैली, जिसे अब दुनिया पिंटरेस्क कहती है, वो इसी छिपे हुए अर्थ को पकड़ती है।
हाँ, और ये कमाल की बात है कि कैसे वे साधारण से दिखने वाले कमरों और घरों को मनोवैज्ञानिक युद्ध के मैदान में बदल देते थे। मतलब उनकी रचनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम जो कहते हैं और जो नहीं कहते उसमें कितना फासला है,
है ना?
तो चलिए इस अनोखे रचनाकार के जीवन और उनके काम की परतों को खोलते हैं। पिंटर का जन्म 1930 में हुआ, तो क्या उस दौर के माहौल का उनके काम पर असर पड़ा?
निश्चित रूप से बहुत गहरा असर पड़ा। उनका जन्म लंदन के हैकनी इलाके में हुआ, एक श्रमिक वर्गीय यहूदी परिवार में। वो महामंदी का दौर था, यूरोप में फासीवाद बढ़ रहा था।
मतलब अनिश्चितता का माहौल।
हाँ, हवा में एक अनिश्चितता थी। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और लंदन पर बमबारी, वो ब्लिट्स। ये सब अनुभव, असुरक्षा, वो बाहरी खतरा, परिचित जगहों का अचानक डरावना हो जाना, ये सब उनके नाटकों में बार बार उभरते हैं।
यानी वो माहौल जिसमें कुछ भी हो सकता था, कोई सुरक्षित नहीं था, ऐसा कुछ?
हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर 9 साल की उम्र में, जब उन्हें युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिए कॉर्नवॉल भेजा गया, वो विस्थापन, वो अकेलेपन का अनुभव भी मुझे लगता है उनके लेखन में कहीं ना कहीं उतर गया।
अच्छा,
उनके नाटकों में अक्सर बंद कमरे दिखते हैं, बाहरी घुसपैठिए आते हैं, अपनी जगह बचाने की जुद्दोजहद दिखती है। शायद इसकी जड़ें बचपन के उन अनुभवों में हैं।
और जब उन्होंने लिखना शुरू किया 50s और 60s का दशक, वो तो ब्रिटिश थिएटर में भी काफी उथल पुथल का समय था। जॉन ऑसबॉर्न जैसे एंग्री यंग मैन मंच पर आ चुके थे।
सही कहा, बिल्कुल। ऑसबॉर्न और उनके साथी वेस्कर वगैरह, वो सामाजिक यथार्थवाद पर जोर दे रहे थे, समाज की कड़वी सच्चाइयों को मंच पर ला रहे थे। पिंटर भी उसी पीढ़ी का हिस्सा थे, लेकिन उनका रास्ता थोड़ा अलग था।
अलग कैसे?
वो बाहरी सच्चाई से ज्यादा मन की भीतरी सच्चाइयों में उतरे, अस्तित्व के सवालों में, भाषा की पहेलियों में।
तो उनका अंदाज ज्यादा मनोवैज्ञानिक था, कह सकते हैं?
हाँ, काफी हद तक। वो सैमुअल बेकेट जैसे यूरोपीय नाटककारों के एब्सर्डिज्म से प्रभावित थे, मतलब जीवन की वो तर्कहीनता, वो बेतुकापन। लेकिन उन्होंने उस बेतुकेपन को अंग्रेजी घरों के ड्राइंग रूम में लाखड़ा किया, उसे ज्यादा पहचाना हुआ बना दिया, पर उतना ही डरावना भी।
अच्छा,
साथ ही लुडविग विटगेंस्टीन जैसे दार्शनिकों के भाषा पर जो विचार थे, उनका भी असर दिखता है कि भाषा हमेशा सच्चाई बयान नहीं करती, बल्कि अक्सर उसे छिपाती है या कह लेंगे शक्ति जताने का जरिया बन जाती है।
यह दिलचस्प है कि भाषा पर इतना जोर था। उनके शुरुआती जीवन में ऐसा क्या था जिसने उन्हें भाषा और साहित्य की तरफ खींचा? क्या कुछ खास था?
देखिए, स्कूल में एक शिक्षक थे, जोसेफ ब्रायली। कहा जाता है कि उन्होंने उनकी साहित्यिक प्रतिभा को पहचाना, प्रोत्साहित किया। लेकिन एक और घटना है जो उनके चरित्र को दिखाती है। 18 साल की उम्र में उन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा करने से इनकार कर दिया था।
अच्छा, ईमानदार आपत्तिकर्ता के तौर पर, वो तो उस समय बड़ी हिम्मत की बात रही होगी।
बिल्कुल, और इसके लिए उन पर जुर्माना भी लगा। ये दिखाता है कि वे शुरू से ही सत्ता पर सवाल उठाने वाले, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने वाले इंसान थे। ये रवैया उनके बाद के राजनीतिक लेखन में भी साफ झलकता है।
और लिखने से पहले उन्होंने अभिनय भी किया डेविड बैरन के नाम से, है ना?
हाँ हाँ, डेविड बैरन। और ये अनुभव उनके लेखन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने करीब 10 साल तक, मतलब अलग अलग प्रांतीय थिएटर कंपनियों के साथ घूम घूम कर अभिनय किया।
अच्छा,
इससे उन्हें मंच की बारीकियां समझ आईं, संवाद की लय, ठहराव, पॉज का क्या महत्व है, बोलचाल की भाषा की नब्ज कैसी होती है, ये सब उन्होंने वहीं सीखा। वे जानते थे कि लोग असल में कैसे बात करते हैं, हिचकिचाते हुए, दोहराते हुए, अधूरी बातें कहते हुए।
हाँ, वो स्वाभाविक लगता है फिर।
बिल्कुल, और यही सच्चाई उनके नाटकों के संवादों में उतर आई।
और इसी दौरान उनकी मुलाकात अभिनेत्री विवियन मर्चेंट से हुई, जिन्होंने बाद में उनके कई अहम किरदार निभाए।
हाँ, 1956 में उनकी शादी हुई। विवियन मर्चेंट ने पिंटर के कई जटिल महिला किरदारों को मंच पर वाकई जीवंत किया। उनका साथ उनके शुरुआती करियर के लिए काफी अहम रहा, इसमें कोई शक नहीं।
तो अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए पिंटर सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ये पिंटरेस्क शैली आखिर है क्या? इसे कैसे पहचाने? कोई आम इंसान कैसे समझे?
देखिए, पिंटरेस्क सिर्फ एक शैली नहीं, ये एक पूरा माहौल है, एक एहसास है। सोचिए, एक साधारण सा कमरा है, सामान्य सी बातचीत चल रही है, लेकिन आपको लगातार एक बेचैनी महसूस हो रही है। लगता है कि सतह के नीचे कुछ भयानक छुपा है, कोई अनकहा खतरा मंडरा रहा है। संवाद सीधे सीधे जानकारी देने के बजाय टालम टोल करते हैं, धमकाते हैं या शक्ति का संतुलन बदलने की कोशिश करते हैं। पहचानें अस्थिर लगती हैं, लगता है हिंसा कभी भी फूट सकती है, वो एक अनकहा तनाव।
और इसमें उनकी मशहूर चुप्पी या पॉज का क्या रोल है? ये सिर्फ शब्दों के बीच का खालीपन तो नहीं है जैसा आपने कहा?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पिंटर के हाथों में चुप्पी एक हथियार बन जाती है। वो पिंटर पॉज सिर्फ सांस लेने की जगह नहीं है, वो अनकहे जज्बात दिखाता है, अंदरूनी कश्मकश, सच बोलने की असमर्थता या कही और अनकही बात के बीच का तनाव।
अच्छा,
वो चुप्पी धमकी भरी हो सकती है, हिचकिचाहट भरी हो सकती है या गहरे अर्थों से लदी हो सकती है। पिंटर ने दिखाया कि जो नहीं कहा गया वो अक्सर कहे गए से ज्यादा ताकतवर होता है।
यानी उन्होंने थिएटर में चुप्पी को भी एक तरह का संवाद बना दिया।
हाँ,
और उनका यथार्थवाद भी पारंपरिक नहीं था, मतलब उनके नाटक असल जिंदगी जैसे लगते भी हैं और नहीं भी। ये कैसे?
सही पकड़ा आपने, उनका यथार्थवाद फोटोग्राफिक नहीं था। वे बारीक घटनाओं की हूबहू नकल करने से ज्यादा मनोवैज्ञानिक और भाषाई सच्चाई पर ध्यान देते थे। उनके पात्र हमारी आपकी तरह रुकते हैं, अटकते हैं, बातें दोहराते हैं। हाँ, ये सब सतह पर है, लेकिन इसके नीचे शब्दों के जरिए लड़ा जाने वाला एक महीन युद्ध चलता रहता है। पिंटर मानते थे कि असल जिंदगी में लोग हमेशा साफ साफ नहीं बोलते, वे छिपाते हैं, टालते हैं, इशारा करते हैं, और यही अस्पष्टता, ये अनिश्चितता उनके नाटकों को पारंपरिक स्पष्टता से ज्यादा जीवन के करीब लाती है।
और कैसे वे घर जैसी सुरक्षित लगने वाली जगह को ही खतरे का केंद्र बना देते थे, ये कमाल का है।
हाँ, ये उनकी खासियत थी। वो बंद कमरा जो सुरक्षा का प्रतीक होना चाहिए, वही मनोवैज्ञानिक दबाव और संघर्ष का अखाड़ा बन जाता है।
अच्छा,
साधारण चीजें जैसे कुर्सी या चाय का कप, वो भी तनाव और अधिकार जताने का जरिया बन सकती हैं। उनके नाटकों में अक्सर क्षेत्र पर कब्जा करने या बचाने की लड़ाई चलती है, चाहे वो भौतिक जगह हो या रिश्तों पर नियंत्रण।
स्मृति या याददाश्त का भी उनके नाटकों में अहम रोल था, खासकर बाद के कामों में, ऐसा सुना है।
बिल्कुल, खासकर ओल्ड टाइम्स जैसे नाटकों में ये बहुत साफ दिखता है। पिंटर के लिए अतीत कोई ठोस स्थिर चीज नहीं है जिसे सब एक जैसा याद रखें, नहीं।
तो फिर क्या है?
बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे वर्तमान की जरूरतों और इच्छाओं के हिसाब से लगातार बदला और गढ़ा जाता है। पात्र अतीत के अपने अपने संस्करणों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे पर हावी होने के लिए। स्मृति यहाँ सच्चाई का आईना नहीं बल्कि शक्ति का खेल बन जाती है।
ये तो बहुत गहरा है। चलिए अब उनके कुछ अहम नाटकों पर आते हैं। शुरुआत कहाँ से मानी जाए जिसने उनके स्टाइल की नींव रखी?
शुरुआत कह सकते हैं द रूम 1957 से हुई। एक छोटा एकांकी नाटक था, लेकिन उसमें पिंटर के सारे बीज मौजूद थे। एक सुरक्षित लगने वाली जगह, एक रहस्यमय बाहरी खतरा और अंदर पनपता डर। फिर आया द बर्थडे पार्टी 1958। एक किरायेदार है स्टैनली, और दो अजनबी आते हैं, गोल्डबर्ग और मैककैन, जो उसे लेने आए हैं। क्यों पता नहीं, ये नाटक शुरू में बुरी तरह पिट गया था।
सच में?
हाँ बिल्कुल, लेकिन एक समीक्षक थे हैरोल्ड हॉब्सन, उन्होंने इसकी अहमियत पहचानी। आज ये क्लासिक माना जाता है। ये दिखाता है कि पिंटर कैसे दर्शकों की बनी बनाई उम्मीदों को तोड़ रहे थे।
लेकिन वो कौन सा नाटक था जिसने उन्हें सही मायने में स्थापित किया, पहचान दिलाई?
वो था द केयरटेकर 1960। दो भाई हैं और एक बेघर चालाक बूढ़ा आदमी है डेविस, जो उनके जर्जर घर में पनाह लेता है। फिर शुरू होता है शक्ति, क्षेत्र और पहचान का एक त्रिकोणीय खेल, जिसमें हास्य और डर का अनोखा मिश्रण था।
हाँ, ये मैंने सुना है।
इस नाटक ने पिंटर को व्यावसायिक और आलोचनात्मक दोनों तरह की बड़ी सफलता दिलाई, और उनकी पहचान ब्रिटेन से बाहर भी बनी।
और द होमकमिंग? सुना है ये आज भी काफी विवादास्पद और समझने में मुश्किल नाटक माना जाता है।
हाँ, शायद ये उनका सबसे जटिल, सबसे क्रूर और चौंकाने वाला नाटक है। एक प्रोफेसर है टेडी, अपनी पत्नी रूथ के साथ सालों बाद अपने उत्तर लंदन के श्रमिक वर्गीय परिवार से मिलने आता है। और वहां जो होता है वो पारिवारिक मेलजोल कम, आदिम रस्मों जैसा ज्यादा लगता है। यौनिकता, मर्दानगी, शक्ति और पारिवारिक रिश्तों का एक ऐसा भयानक खेल सामने आता है कि दर्शक हिल जाते हैं। रूथ का अंत में वही रुक जाने का फैसला, वो आज भी बहस का विषय है।
बाप रे। फिर आता है बिट्रेल 1978, जो अपनी कहानी कहने के तरीके के लिए जाना जाता है, उल्टे क्रम में।
बिल्कुल, ये नाटक एक विवाहितर संबंध की कहानी है, लेकिन उल्टे क्रम में। कहानी खत्म होने से शुरू होती है और रिश्ते की शुरुआत तक जाती है, पीछे की तरफ।
अच्छा।
पिंटर ने इसे अपने निजी अनुभव लेडी एंटोनिया फ्रेजर के साथ अपने लंबे चले अफेयर से प्रेरित होकर लिखा था। ये उल्टा क्रम एक अजीब सी उदासी और विडंबना पैदा करता है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि अंत क्या होने वाला है। ये स्मृति धोखे और रिश्तों की नाजुकता पर एक तीखा व्यंग्य है। ये उनका सबसे ज्यादा खेला जाने वाला नाटक भी बन गया बाद में।
और फिर उनके तेवर बदले, वे ज्यादा राजनीतिक हो गए 80 के दशक के बाद।
हाँ, 80 के दशक के बाद उनका लेखन ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हो गया। इसमें इतिहासकार एंटोनिया फ्रेजर, जिनसे उन्होंने 1980 में शादी की, उनकी संगत का भी असर रहा होगा। नाटक जैसे वन फॉर द रोड 1984 राजकीय यातना पर था, माउंटेन लैंग्वेज 1988 एक ऐसे क्रूर शासन की कहानी कहता है जो अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा को ही खत्म कर देना चाहता है।
ओहो।
एशेज टू एशेज 1996 घरेलू हिंसा और होलोकॉस्ट जैसे बड़े ऐतिहासिक अत्याचारों के बीच एक डरावना सा रिश्ता जोड़ता है। इन नाटकों में भी भाषा का खेल और चुप्पी अहम है, लेकिन अब वे सीधे सीधे उत्पीड़न और सत्ता के दुरुपयोग के हथियार बनते दिखते हैं।
तो अगर हम उनकी तुलना उनके समकालीन लेखकों से करें, जैसे आपने बेकेट और ऑसबर्न का जिक्र किया, तो वे कहाँ खड़े होते हैं इनके बीच कहीं?
हाँ, एक तरह से कह सकते हैं वे ऑसबॉर्न की तरह सामाजिक मुद्दों से अछूते नहीं थे, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनका फोकस ज्यादा भीतरी दुनिया पर था, मनोवैज्ञानिक पहलू पर।
ठीक है।
वे बेकेट के एब्सर्डिज्म से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने उसे ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा घरेलू सेटिंग में उतारा। वे विटगेंस्टीन की तरह भाषा की सीमाओं और उसके धोखे को समझते थे, तो वे इन सब धाराओं से कुछ न कुछ लेते हैं, लेकिन जो बनाते हैं वो एकदम मौलिक, एकदम पिंटरेस्क होता है।
तो पिंटर की विरासत क्या है? क्या आज के नाटककार या फिल्मकार भी उनसे प्रभावित है? उनका असर दिखता है?
उनकी विरासत बहुत गहरी और व्यापक है। उनकी तकनीकें, वो साधारण बातचीत से तनाव पैदा करना, चुप्पी का नाटकीय इस्तेमाल, जानबूझकर अस्पष्टता बनाए रखना, ये सब अब आधुनिक नाटक लेखन और पटकथा लेखन के व्याकरण का मतलब हिस्सा बन चुकी हैं।
अच्छा।
आप डेविड मैमेट के किरदारों के तेज टूटे फूटे संवादों में या मार्टिन मैकडॉन के नाटकों की हिंसक कॉमेडी में पिंटर का असर साफ देख सकते हैं।
और थिएटर के बाहर फिल्मों या टीवी में भी इसका असर है?
बिल्कुल। डेविड लिंच की फिल्मों का वो रहस्यमयी, बेचैन करने वाला माहौल, या कोएन बंधुओं की फिल्मों का वो अजीब हास्य और खतरा, यहाँ तक कि दसो प्रानोस जैसे मशहूर टीवी शो में भी किरदारों के बीच का अनकहा तनाव और पावर प्ले दिखाने में पिंटरेस तकनीकें इस्तेमाल होती हैं।
हाँ, सही कहा।
खुद पिंटरेस शब्द का भाषा में शामिल हो जाना ही उनकी विरासत का सबूत है। ये खास तरह के माहौल को बयां करता है, और उनके नाटक आज भी दुनिया भर में खेले जाते हैं, क्योंकि वे सत्ता, संवाद, पहचान और डर के उन बुनियादी सवालों से जूझते हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे।
उन्हें सम्मान भी बहुत मिले, जिनमें सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार था साहित्य का।
हाँ, टोनी अवार्ड, ओलिविया अवार्ड जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, और 2005 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। स्वीडिश अकेडमी ने बहुत खूबसूरती से कहा था कि पिंटर रोजमर्रा की बकबक के नीचे के खड्डे को उजागर करते हैं और दमन के बंद कमरों में जबरदस्त प्रवेश करते हैं।
वाह।
ये उनके काम के दोनों पहलुओं, मनोवैज्ञानिक गहराई और राजनीतिक साहस को जैसे एक ही वाक्य में समेट लेता है।
और उनका नोबेल पुरस्कार स्वीकार करते समय दिया गया भाषण भी काफी चर्चा में रहा था, है ना?
हाँ, बहुत। वे बीमार थे, इसलिए वीडियो के जरिए भाषण दिया था, जिसका शीर्षक था कला, सत्य और राजनीति। इसमें उन्होंने सिर्फ साहित्य की बात नहीं की, बल्कि तत्कालीन अमेरिकी और ब्रिटिश विदेश नीति, खासकर इराक युद्ध की बहुत तीखी आलोचना की।
अच्छा।
उन्होंने कहा कि सच जैसी कोई चीज कला में भले ही पकड़ में ना आए, लेकिन राजनीति में सच और झूठ होते हैं, और उन पर बात करना, उन्हें उजागर करना जरूरी है। ये दिखाता है कि वे कला को समाज और राजनीति से अलग नहीं मानते थे, बल्कि कलाकार की एक नैतिक जिम्मेदारी समझते थे।
ये दिलचस्प है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कुछ सम्मान लिए, जैसे CBE और कंपेनियन ऑफ ऑनर, लेकिन नाइटहुड यानी सर की उपाधि दो बार ठुकरा दी।
हाँ, ये उनके व्यवस्था के साथ, कह सकते हैं, एक जटिल रिश्ते को दिखाता है। वे पूरी तरह से व्यवस्था के बाहर भी नहीं थे, लेकिन उसकी चापलूसी या अंधभक्ति करने को भी तैयार नहीं थे। वे हमेशा एक बाहरी व्यक्ति, एक आलोचक की भूमिका में रहे।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं जो उनके विचारों की झलक देते हैं, क्या कुछ साझा कर सकते हैं?
हाँ, जरूर। एक तो स्मृति के बारे में, जो उनके नाटक ओल्ड टाइम्स की थीम से जुड़ा है। अतीत वह है जो आप याद करते हैं, जिसे आप याद करने की कल्पना करते हैं, जिसे आप खुद को याद करने के लिए मनाते हैं या जिसे आप याद करने का नाटक करते हैं। यह दिखाता है कि वे याददाश्त को कितना लचीला और व्यक्तिपरक मानते थे।
बिल्कुल। और सच्चाई के बारे में उनका नजरिया, जो उनके नाटकों की अस्पष्टता को समझने में मदद करता है।
क्या वास्तविक है और क्या अवास्तविक है, इसके बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं है, न ही सत्य और असत्य के बीच। कोई चीज जरूरी नहीं कि या तो सत्य हो या असत्य, वो सत्य और असत्य दोनों हो सकती है। हाँ, ईशा जीवन की जटिलता को स्वीकार करने का उनका तरीका था। उनके संवाद लिखने के तरीके पर यह कथन रोशनी डालता है। मैं ये कभी नहीं समझ पाया कि कोई भाषा उसे खुद बोलते हुए सुनने के अलावा कैसे सीखी जा सकती है।
अच्छा,
शायद इसीलिए उनके संवाद इतने असली लगते हैं, कानों सुने लगते हैं।
और उनका राजनीतिक साहस इस कथन में झलकता है, जो उन्होंने इराक युद्ध के बारे में कहा था। इराक पर आक्रमण एक डाकुओं जैसा कृत्य था, खुलेआम राजक आतंकवाद का कृत्य, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवधारणा के प्रति पूर्ण अवमानना दर्शाता है। वे अपनी बात कहने से कभी नहीं हिचकिचाते थे, चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो।
और एक थोड़ा मजेदार पहलू भी है, क्रिकेट के लिए उनका जुनून। उन्होंने एक बार कहा था, मैं मानता हूं कि क्रिकेट ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर बनाई गई सबसे महान चीज है, निश्चित रूप से सेक्स से भी बेहतर, हालांकि सेक्स भी बहुत बुरा नहीं है।
अच्छा, ये तो मजेदार है, उनके गंभीर व्यक्तित्व के पीछे ये पहलू भी था।
हाँ बिल्कुल, एक उत्साही इंसान की झलक।
कुछ और छोटी मोटी लेकिन रोचक बातें हैं उनके बारे में, जो शायद कम लोग जानते हों।
हाँ, कुछ बातें हैं, जैसे हमने बात की, वे ईमानदार आपत्तिकर्ता थे। डेविड बैरन के नाम से अभिनय किया। बिट्रेयल नाटक उनके अपने अफेयर पर आधारित था, ये बात भी अब खुल चुकी है। इतिहासकार एंटोनिया फ्रेजर से शादी की, जिन्होंने उन्हें और राजनीतिक रूप से मुखर होने के लिए प्रेरित किया, ऐसा माना जाता है। क्रिकेट के बेहद शौकीन थे, खुद भी खेलते थे और एक क्लब गायटीज क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष भी रहे। और गले के कैंसर से लंबे समय तक जूझने के बावजूद उन्होंने लिखना और बोलना जारी रखा आखिर तक।
उनके नाटकों के अलावा उन्होंने पटकथाएं भी लिखीं और वो भी काफी सफल रहीं।
हाँ, वे खुद एक बहुत ही माहिर पटकथा लेखक थे। खासकर निर्देशक जोसेफ लोसी के साथ उनकी तिकड़ी ने ब्रिटिश सिनेमा को कुछ बेहतरीन फिल्में दी, जैसे द सर्वेंट, एक्सीडेंट, द गो बिटवीन।
हाँ, इनके नाम सुने हैं।
इन फिल्मों में उन्होंने दूसरों के उपन्यासों को अपनी शैली और अपने विषयों जैसे वर्ग संघर्ष, दमित इच्छाएं, सत्ता का खेल के साथ बड़ी खूबसूरती से ढाला।
और जॉन फाउल्स के उपन्यास द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन पर बनी फिल्म की पटकथा के लिए तो उन्हें ऑस्कर नामांकन भी मिला था। वो तो बहुत मुश्किल उपन्यास माना जाता है।
बिल्कुल, उस उपन्यास को फिल्म में बदलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसमें लेखक खुद कहानी पर टिप्पणी करता रहता है। पिंटर ने इसका एक शानदार हल निकाला। उन्होंने दोहरी कहानी बुनी, एक विक्टोरियन प्रेम कहानी और दूसरी उसे फिल्माने वाले आधुनिक अभिनेताओं की कहानी, जो समानांतर चलती हैं। ये उनकी रचनात्मकता और क्राफ्ट का बेहतरीन उदाहरण है।
वाह, और उनके नाटक रेडियो पर भी सफल रहे।
हाँ, क्योंकि रेडियो पूरी तरह आवाज, संवाद और खामोशी पर निर्भर करता है, और यही तो पिंटर की कला के मूल तत्व थे। इससे पता चलता है कि उनकी ताकत भव्य दृश्यों में नहीं, बल्कि शब्दों और उनके बीच की अनकही जगहों में थी।
तो अंत में, अगर हमें पिंटर से आज कुछ सीखना हो तो वो क्या होगा? उनकी रचनाओं से क्या सबक मिलता है आज के समय में?
शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। मानवीय रिश्ते, संवाद, सत्ता का संतुलन, ये सब अक्सर सत्ता के नीचे इशारों, ठहरावों और चुप्पियों में तय होते हैं। पिंटर हमें उस छुपी हुई भाषा को पढ़ना और अस्पष्टता में भी अर्थ ढूंढना सिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया, हमारे रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं और भाषा कितनी ताकतवर, जोड़ने के लिए भी और हाँ, तोड़ने के लिए भी।
सही कहा।
उनकी कला हमें हमेशा यह सवाल पूछने के लिए उकसाती है, यहाँ सच में क्या हो रहा है? जो कहा जा रहा है उसके पीछे का असली मतलब क्या है?
और शायद आज की इस शोर भरी दुनिया में उस चुप्पी को सुनना और अनकहे को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया।
बिल्कुल, यही उनकी प्रासंगिकता है आज भी।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।